आगे जी सूरत गाफिर, जिसको सूरत मोमिन भी कहते हैं। तरतीब में 40 नंबर की सूरह है, 85 आयात है। इसके बारे में एक रिवायत सुन लीजिए, यह हामीम वाली सूरतों में से सूरत है। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कुरान की मिसाल उस शख्स जैसी है जो अपने घर वालों के लिए किसी अच्छी मंजिल की तलाश में निकला, तो एक जगह ऐसी आई जहाँ गोया अभी अभी बारिश बरस चुकी है। ये ज़रा ही कुछ आगे बढ़ा होगा कि देखता है कि तरोताज़ा लह लहाते हुए चंद चमन है, यानी बाग है। ये पहले तर ज़मीन को देख कर ही ताजुब में था, अब तो इसका ताजुब और बढ़ गया। इससे कहा गया कि पहले की मिसाल तो कुरान पाक की अजमत की है और इन बागीचों की मिसाल ऐसे जैसे हामीम वाली सूरतें। हवामीम को दीबाजुल कुरान भी कहते हैं। तो बहरहाल ये कि खूबसूरत सूरतें आप देखेंगे, इनमें सौती हुसन बहुत है। तो गाफिर, जिसको सूरत मोमिन भी कहते हैं, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहि अज़ीज़िल अलीम। आयत 1 से 9, रुकू नंबर 6, अर्श के फरिश्तों की अहले ईमान के लिए दुआ। आप देख रहे हैं अर्शियों की दुआएं फरशियों के लिए अब कितनी ज़्यादा आ रही हैं, यानी अल्लाह ताला कुरान पढ़ने के साथ साथ आपका उफक बुलंद करता जा रहा है। हामीम, इस किताब का नाजिल फरमाना उस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और दाना है, गुनाह का बख्शने वाला और तौबा कबूल फरमाने वाला, सख्त अज़ाब वाला, इनाम और कुदरत वाला, जिसके सिवा कोई मबूत नहीं, इसी की तरफ वापस लौटना है। हज़रत उमर ने इस आयत को अपने उस गवर्नर को लिखकर भेजा था जिसकी बैड रिपोर्ट आई थी। लोगों ने कहा वो तो ऐशो इशरत में पड़ गया। अच्छा, ये ख़त पकड़ा, ये सिर्फ आयत लिखी, नीचे तर्जमा लिखा दे दी। उसने पढ़ के खोला, रोने लगा और तौबा की कि उमर मैं आइंदा ऐसे काम नहीं करूँगा, क्योंकि गाफिर ज़म्ब काबिल तौब, अल्लाह की चार सिफात हैं जिसमें अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह का पकड़ना और तौबा को कबूल करना आता है। अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, बस इनका शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाल दे। कौम नूह ने और इनके बाद के गिरोहों ने भी झुटलाया था, और हर उम्मत ने अपने रसूल को गिरफ्तार कर लेने का इरादा किया और बातिल के ज़रिए झूठे बहस मुबाहसे किए ताकि इनसे हक को बिगाड़ दें। बस मैंने इनको पकड़ लिया, सो मेरी तरफ़ से कैसी सज़ा हुई, और इस तरह आपके रब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया कि वो जहन्नमी हैं। अर्श के उठाने वाले और इसके पास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। कहते हैं हमारे रब परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस इन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी रख की पैरवी करें, और तू इन्हें दोजख के अजाब से भी बचा ले। ऐ हमारे रब, तू इन्हें हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा जिसका तूने इनसे वादा किया है, और इनके बाप दादाओं और बीवियों और औलादों में से भी उन सब को जिन्होंने नेक अमल किए हैं। यकीनन तू गालिब और बाहिकमत है, इन्हें बुराइयों से भी महफूज रख। हक तो यह है कि इससे तूने बुराइयों से बचा लिया, इस पर तूने रहमत कर दी, और ये बहुत बड़ी कामयाबी ही तो है। तो क्या पता चला, कामयाबियों को पाने से पहले गुनाहों से माफ़ी। आप देखिए अल्लाह की शान आयत 3 में आपके सामने है, गाफिरिज़म काबिल तौब शदीद इलक़ाब ज़िद तौल, अपनी रहमतों से गुनाहों को ढांप लेने वाला, बेख्तियारी गलतियों को माफ़ करने वाला, फासिकों को सख्त सज़ा देने वाला और अपने बंदों पर कसीर एहसान करने वाला। हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया? तस्बीह करने के लिए नहीं, तस्खीर कायनात के लिए और निफाज़े शरिया के लिए, जो अगली सूरतों में हम पढ़ेंगे। करो बयां कौन थे, वो कहते हैं ना कि वरना तारीफ़ के लिए कम ना थे करो बयां फरिश्ते। क्या करते हैं फरिश्ते, जिनके भी बातें सुनी हैं? नंबर एक, अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करते हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम कहते हैं, अल्लाह पर कामिल ईमान लाते हैं, अल्लाह के मोमिन बंदों के लिए खैरख्वाह होते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, और उनके लिए जो तौबा करके ईमान ला चुके जन्नत में दाखिले की दुआएं करते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कि वो उनकी औलादों के लिए भी दुआएं करते हैं, उनके माँ बाप के लिए भी दुआएं करते हैं। देखिए, नेकियों का सफ़र पूरी फैमिली को दुआओं लेने वाला, दुआएं समेटने वाला बना देता है। आप चाहें ना चाहें आपके घर वालों को दुआएं खुद ब खुद मिल रही होती हैं। अब सवाल यह कि फरिश्तों की दुआएं पाने वाले आमाल कौन से हैं? तो नंबर एक, बावजू होकर सोना, हर करवट पे फरिश्ता दुआ देता है, लोगों को भलाई की दावत देना, नमाज के बाद जाए नमाज पे बैठे रहना, मरीज़ की आदत करना, सहरी खाना, किसी की गैर मौजूदगी में इसके लिए दुआ करना। हमें क्या सीखने को मिला? अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करनी है, ईमान वालों के लिए दुआ मगफरत करनी है, तौबा करनी है, अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ने वालों से झगड़ना है यानी उनको रोकना, इससे किताब के काम को अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी समझना है, हक को नीचा दिखलाने की कोशिश नहीं करनी। आप देखिए कि ये दीन का काम किसी का काम नहीं होता, अल्लाह कुछ लोगों को चुनता है और वो फैसिलिटेट करते हैं। तबूक के सामान में किसी ने मुट्ठी भर खजूरें रख दी, कोई अपनी पतीली ले आया होगा, किसी ने कोई तीर डाल दिया होगा और काम बन गया। बस आपका मेरा काम क्या है? अपनी बिलोंगिंग्स को अल्लाह से छुपा के ना रखें, दैट्स इट। आगे जी रुकू नंबर 7 आयत 10 से 20, खालिस होकर सिर्फ अल्लाह को पुकारना है। इन अल्लज़ीन कफरू युनादौन लमक्तुल्लाह, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया इन्हें आवाज़ दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुमसे बेजार होना इससे बहुत ज़्यादा है जो तुम बेजार होते थे अपने जी से। जब तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते थे फिर कुफर करने लगते थे, वो कहेंगे हमारे परवरदिगार तूने हमें 2 बार मारा और 2 ही बार ज़िंदा किया, अब हम अपने गुनाहों के इकरारी हैं, तो क्या कोई राह निकलने की भी है? यह अजाब तुम्हें इसलिए है कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो तुम इनकार कर जाते थे, और अगर इसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे। बस अब फैसला अल्लाह बुलंद व बुजुर्ग का ही है, वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोज़ी उतारता है, और नसीहत तो सिर्फ वही हासिल करते हैं जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तुम अल्लाह को पुकारते रहो इसके लिए दीन को खालिस करके, वो कुफार इस बात से बुरा माने, बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल करता है ताकि वो मुलाकात के दिन से डर आए। कौन सा है वो दिन? जिस दिन सब लोग जाहिर हो जाएंगे, नो हिडन थिंग, इनकी कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा ना रहेगी, और पूछा क्या जाएगा आप ज़रा इमेजिनेशन में लाए, सब ख़त्म, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और एक पुकार लगती लिमन अल मुल्क अल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है? कोई हो तो बोले और किसी में जुरत हो तो बोले, खामोशी खामोशी। कुछ अरसे के बाद फिर अल्लाह ताला खुद बोलेंगे क्या? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह अकेले वाहिद गालिब की। आज हर नफ्स को इसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, आज किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा, यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, और इन्हें बहुत ही करीब आने वाली दुनिया से, करीब से क़यामत से आगाह कर दीजिए, जो कि गम के बारे में हलक तक पहुंच जाएंगे और सब खामोश होंगे। ज़ालिमों का कोई दिली दोस्त ना होगा ना सिफारशी के जिसकी बात मानी जाए, वो आँखों की ख़यानत को और सीनों की पोशीदा बातों को खूब जानता है। कभी चोरी छुपे किसी की कोई चीज़ देखी है? किसी के फ़ोन में झांक कर, किसी के घर में कोई अलमारी खोल के देखी है तो इस आयत को याद कर ले, आप सबसे छुप जाएंगे, कैमरे की आंख भी नहीं आपको देखेगी पर वो हस्ती आपको देख रही है। और अल्लाह ताला ठीक ठीक फैसला कर देगा। इसके सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो किसी चीज़ का भी फैसला नहीं कर सकते, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनता खूब देखता है। तो क्या पता चला अल्लाह की नाराज़गी की कुछ निशानियाँ मिली हमें इस रुकू में? क्या? जब नेकियां करने को दिल ना चाहे, जब गुनाहों पर अफसोस ना हो, जब खुद की इसलाह की फिक्र ना हो, जब अल्लाह के लिए कुर्बानी देने को दिल ना करे, तो मान लीजिए कि अल्लाह नाराज़ हो रहा है। अल्लाह अकबर। फिर आप देखिए यहाँ आपको क़यामत के नाम मिलेंगे। अभी क्या नाम है? यौम तलाक। थोड़ा सा आगे जाएंगे यौमुल आज़िफ़ा, थोड़ा और जाएंगे यौमुल हसरा। तलाक लिखा से मुलाकात, तलाक तोए वाली कौन सी है? कटना। अल्लाह को मुतलक तलाक, ते वाली तलाक कौन सी है? मिलने वाली। तो हमारे मखारिज गलत हुए ना, तो तलाक तलाक में बदल जाएगी। शौहर कह रहा है मैंने तुझे तलाक दी, तो वो असल में तलाक दे रहा है, ता नहीं दे रहा, ता दे रहा है। तो अपने मखारिज को हमने बेहतर करना, ये मुराद है। क़यामत का ये एक नाम है जिस दिन जिस्म और रूह से मुलाकात होगी एक दूसरे की, बिछड़े लोग आपस में मिलेंगे, इसलिए इसको मुलाकातों का दिन कहते हैं। ईमानी रिश्ते आपस में मिलेंगे, अपने नामे अमाल से इंसान मिलेगा, और सबसे बड़ी बात अपने रब से मिलेगा। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह की रज़ा वाले नुक्ते, नसीहत कबूल करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, दीन को अल्लाह के लिए खालिस करना, शिर्क नहीं करना, आखरत के दिन से डरना, और यकीन रखना कि अल्लाह ताला सीनों के राज भी जानता है। अल्लाह हमें ऐसे ही यकीन वालों में रखे। रुकू नंबर 8 है, आयत 21 से 27। तारीख से इबरत लेनी है। अवलम यसीरु फिल अर्द, क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं कि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे का नतीजा कैसा हुआ। वो कुव्वत और ताकत के एतबार से और ज़मीन में अपनी यादगारों के एतबार से इनसे बहुत ज़्यादा थे, पस अल्लाह ने इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया। इसको हाईलाइट करें। आसारे कदीमा में से अक्सर बुत दिखते हैं और इसी तरह की गलत चीज़ें, और कोई ना हुआ जो इन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेता। ये इस वजह से कि इनके पास इनके पैगंबर मौजज़े ले लेकर आते थे तो वो इनकार कर देते थे, बस अल्लाह इन्हें पकड़ लेता था। यकीनन वो ताकतवर और सख्त अजाब वाला है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयतों और खुली दलीलों के साथ भेजा फिरौन, हामान और कारून की तरफ, तो उन्होंने कहा ये तो जादूगर और झूठा है। बस जब इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से दीन हक लेकर आए तो उन्होंने कहा कि इसके साथ जो ईमान वाले हैं इनके लड़कों को तो मार डालो और इनकी लड़कियों को जिंदा रखो, और काफिरों की जो हीला साजी है वो गलती में है। और फिरौन ने कहा कि मुझे छोड़ दो कि मैं मूसा को मार डालूं, और इसे चाहिए कि अपने रब को पुकारे, मुझे तो डर लगता है ये कहीं तुम्हारा दीन न बदल डाले। नोट कीजिएगा, हर दौर में ये थ्रेट लगा लोगों को हक के दीन से, या मुल्क में कोई बहुत बड़ा फसाद बरपा ना कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ, हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स की बुराई से जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं रखता। तो क्या पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम आजमाए गए, खौफ दिलाया गया। आज भी अगर किसी का खौफ हो ना आपको, तो दुआ याद कर लें, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नाऊज़ुबिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हम तुझे इनके मुकाबिल करते हैं, यानी इनके आगे तू आ जा, और इनकी बुराइयों से तेरी पनाह तलब करते हैं। और ये बड़ी सख्त दुआ होती है दुश्मनों के हक में। क्या सीखा? रब की पनाह लेनी है, ईमान वालों को अजियतें नहीं देनी, अल्लाह की पकड़ का खौफ रखना है, पुरानी कौमों के अंजाम से इबरत लेनी है। अब आगे वो मर्द मोमिन का कलमा हक दिख रहा है, आयत नंबर 28 से 37। एक मोमिन का कलमा हक। वकाल रजुल मोमिन मिन आलि फिरौन, देखिए अपने ही घर से अल्लाह ने फिर एक शख्स उठा दिया, और एक मोमिन शख्स ने जो फिरौन के ख़ानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुए था, कहा कि क्या तुम एक ऐसे शख्स को महज इसलिए कत्ल कर डाल रहे हो कि वो कहता है कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है? अगर वो झूठा हो तो इसका झूठ इसी पर है, और अगर वो सच्चा हो तो इस अजाब का जो वो तुमसे वादा कर रहा है कुछ ना कुछ तुम पर भी आ पड़ेगा। अल्लाह ताला इसकी राहबरी नहीं करता जो हद से गुजरने वाला और छूटा हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तो बात चाहत मेरी है कि इस ज़मीन पर तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अज़ाब हम पर आ गया तो कौन हमारी मदद करेगा? फिरौन बोला, मैं तो तुम्हें ही वही राय दे सकता हूँ जो खुद दे रहा हूँ, यानी जो खुद देख रहा हूँ, यानी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो तुम्हें सिर्फ वही बताऊँगा, और मैं तुम्हें भलाई की राह ही बताऊँगा। इस मोमिन ने कहा कि मेरी कौम के लोगों, मुझे तो अंदेशा है कि तुम पर भी वैसा ही रोज़े बद ना आ जाए जो और उम्मतों पर आया, जैसे उम्मत नूह और आद और समूद और इनके बाद वाले लोगों का हाल हुआ, और अल्लाह अपने बंदों पर किसी तरह का जुल्म नहीं करना चाहता। आप देखिए, ये मर्द मोमिन का किरदार भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। हर एक कहते अपनी अपनी करो, छोड़ो ना, कौन बुरा बने, ये भी कह सकता था ना। ये नबी है, ना वली, ना पैगंबर, और इसका नाम कुरान में। तो अल्लाह लोगों के अमल ज़ाया नहीं करता। ऐ मेरी कौम, तुम पर भी क़यामत के दिन का डर है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे, तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसको राह दिखाने वाला कोई नहीं। और इससे पहले तुम्हारे पास यूसुफ दलीलें लेकर आए थे, फिर भी तुम इनकी लाई हुई दलील में शक व शुबा करते रहे, यहाँ तक कि जब इनकी वफात हो गई तो कहने लगे इनके बाद तो अल्लाह किसी रसूल को भेजेगा ही नहीं। इस तरह अल्लाह गुमराह करता है हर उस शख्स को जो हद से बढ़ जाने वाला शक को शुबा करने वाला हो। इसको नोट कीजिएगा। अल्लाह हर एक को नहीं गुमराह करता, अल्लाह क्यों करेगा? शक एक ऐसा दुश्मन है कि उसके बाद वाकई अल्लाह उस बंदे के लिए गुमराही के रास्ते खोल देता है। जो बग़ैर किसी सनद के इनके पास आई हुई अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह के नज़दीक और मोमिनों के नज़दीक ये तो बड़ी बेजारी की चीज़ है। अल्लाह ताला इसी तरह हर मगरूर और सरकश के दिल पर मोहर कर देता है। अब ज़रा सुनिए फिरौन की अकड़, तभी तो अल्लाह ने इसको पानी में डाला ना। फिरौन ने कहा कि हामान मेरे लिए एक बाला खाना बना, यानी अपर स्टोरी, कि मैं इन दरवाज़ों तक पहुंच जाऊं जो आसमान के दरवाज़े हैं और मूसा के माबूद को झांक लूं, और बेशक मैं समझता हूं कि वो झूठा है। इसी तरह फिरौन की बद किरदारियाँ इसे भली दिखाई गईं और राह रात से इसको रोक लिया गया, और फिरौन का हर बहाना या उसकी हर हीला साजी तबाही में ही रही। क्या पता चला कि सहाबा कराम और मर्द मोमिन में बहुत सी ममासलतें हैं। अल्लाह उनसे भी राज़ी हो और उससे भी राज़ी हो। हक बात के ख़िलाफ़ चुप नहीं रहना। अक्सरियत का नहीं, हक का साथ देने वाले थे सहाबा, अपने ईमान का बरमला इजहार किया था। हमें भी नहीं शर्माना चाहिए। बस अब हम कहते लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातें ये वो, तो लोगों का डर अल्लाह की इताअत का शौक ख़त्म कर देता है। इसको निकालना है। फिर बुराई को देखकर कभी इससे एराज़ नहीं किया। जुर्रत वाले इमारात से नहीं मरूफ होते, यानी जुर्रत वाले लोगों की बड़ी बड़ी इमारात से मरूफ नहीं होते। फिर आप देखिए कि आयत 35 में तीन लफ्ज़ आपके सामने हैं, इसराफ, मुरताब और तावीलात। तीनों खराबियां लोगों की हिदायत से दूरी का सबब बनती हैं। इसराफ कह के हद से बढ़ना, अल्लाह ताला को ऐसे लोग नहीं पसंद जो हुक्म या नहीं, अमर और नहीं के मामले में हदों से गुजरते हैं। फिर इसी तरह मुर्ताब कौन लोग हैं कि जितनी मर्ज़ी आप उनको दलीलें दे दें शक ही करेंगे, उनके दिल का शक ही नहीं ख़त्म होता। और फिर तावीलात, अल्लाह की आयतों में भेजा तावीलात करने वाले। क्या पता चला कि जितना ज़्यादा हम लोगों की हिदायत की तड़प रखेंगे, अल्लाह ताला हमें उतना लोगों के लिए खैर का ज़रिया बनाएगा। फिर अल्लाह की रज़ा पाने वाले नुक्ते, हद से नहीं गुजरना, झूठ से इज्तनाब करनी है, गरूर नहीं करना, शक नहीं करना, और बुरे अमाल को खुशनुमा बनाकर पेश नहीं करना। और यौमत तनाद, एक नाम और पढ़ के आया हूँ, चीखो पुकार का दिन होगा, उस दिन से डरना। कौन किसके ऊपर चीख रहा होगा, क्यों चीख रहे होंगे, दुनिया की चीज़ों पे? नहीं, सिर्फ इस पे चीख रहे होंगे कि तुम्हें मैंने कहा था ठीक हो जाओ, क्यों नहीं हुए। अब देखिए जहन्नम के मनाजिर इंसान को बहुत ज़्यादा सोचने पे माइल करते हैं। आगे है जी रुकू नंबर 10, 38 से 50। हमेशगी का घर आखिरत का किसको मिलेगा? वक़ाल लज़ी आमन या कौम इत्तबिऊनी, और इस ईमानदार शख्स ने कहा मेरी कौम के लोगों तुम सब मेरी पैरवी करो, मैं नेक राह की तरफ तुम्हारी राह बरी करूँगा। ऐ मेरी कौम, यह दुनिया की ज़िंदगी बताए फ़ानी है, यकीन मानो कि करार और हमेशगी का घर तो आखरत ही है। जिसने गुनाह किया है इसे तो बराबर ही का बदला मिलेगा, और जिसने नेकी की ख्वाह वो मर्द हो या औरत, वो ईमानदार भी हो, तो ये लोग जन्नत में जाएंगे और वहाँ बेशुमार रोज़ियाँ पाएंगे। आप देखिए कि कोई चीज़ ऐसी आपने अभी तक पढ़ी कि तुम यहाँ अच्छा काम करो तो वहाँ बुरा मिलेगा, यहाँ ज़्यादा अच्छे करो तो वहाँ कम मिलेगा? नहीं। तो जब इतना फेयर मामला अल्लाह के साथ आपका मेरा, तो फिर हमें क्या चीज़ रोकती है? दुनिया बहुत धोखे में डाल देती है। और मैं सोचती हूँ, हम तो कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़वाते भी हैं, हम अगर ना बदले तो बाकी कैसे बदलेंगे? कई दफ़ा हम दुनिया के चक्रों में खोए 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 रहते हैं, और हमारी मौत का वक्त करीब आ जाएगा। तो ज़रा सा सुनिए इस शख्स की बातें। ऐ मेरी कौम, ये क्या बात है कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुला रहा हूँ और तुम मुझे दोजख की तरफ बुला रहे हो? तुम मुझे दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफर करूँ और इसके साथ शिर्क करूँ जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, और मैं तुम्हें गालिब बख्शने वाले माबूद की तरफ दावत दे रहा हूँ? ये यकीनी अमर है कि तुम मुझे जिसकी तरफ बुला रहे हो वो ना तो दुनिया में पुकारे जाने के काबिल है ना आखरत में, और ये भी यकीनी बात है कि हम सब का लौटना अल्लाह की तरफ है, और हद से गुजर जाने वाले ही यकीनन अहले दोजख हैं। बस आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद करोगे, फसतस्कुरूनमा अकूलुलकुम, और आगे क्या, वफविज़ुअम्रीलल्लाह, मैं तो अपना मामला अल्लाह पे पेश करता हूँ और अल्लाह अपने बंदों पे निगरान है, यानी मुराद है कि वो कभी जुल नहीं होने देगा। बस इसे अल्लाह ने तमाम बदियों से महफूज रखा जो उन्होंने सोच रखी थी, और फिरौन वालों पर बुरी तरह का अजाब लट पड़ा, आग जिसके सामने ये हर सुबह शाम लाए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी फरमान होगा कि फिरौनियों को सख्त तरीन अजाब में डाल दो। सोचिए क्या ये आयतें ऐसी पढ़ के जाने वाली हैं। गौर फिक्र, तदब्बर, अल्लाह से बातें करें, नियतें करें, इरादे करें। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब के दोजख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग तकब्बुर वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, यानी फॉलोअर्स थे, तो क्या अब तुम हमसे इस आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो। सोचिए, वो बड़े लोग जवाब देंगे, हम तो सभी इस आग में हैं, अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है, हम तो खुद फंसे हुए, हम तुम्हें कैसे निकालें। और तमाम जहन्नमी मिलकर जहन्नम के दारोगा से कहेंगे कि तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो कि वो किसी दिन तो हमारे अजाब में कमी कर दे। हम एक रात सोना चाहते हैं, हमें सुकून चाहिए। कभी कोई बीमार शख्स आपके घरों में ऐसा हो जिसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, बैग लगा हुआ है, क्या उस वक्त दिल में आता है, मुझे एक रात सोना है, मुझे इंजेक्शन लगा दो। कभी लोगों को नींद की मसला होता है ना, तो दवाई खाएंगे ना, तो जब गोली नहीं मिलेगी तो वो उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, और वहाँ क्या है, कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर दो, चलो ओवन का ज़रा सा ढक्कन खोल दो। वो जवाब देंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल मौजे लेकर नहीं आए थे। वो कहेंगे, क्यों नहीं। वो कहेंगे, फिर तुम ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ महज बेअसर और बेराह है। देखिए, गुनाह तो मुसलमान भी करता है, लेकिन उम्मीद तो रखता है ना, कुफार की तो वहाँ कोई बात नहीं चलनी। और यहाँ वो हदीस भी आपके लिए लिखी हुई है, सही बुखारी की 6491, इब्ने अब्बास इसके रावी हैं, कि एक शख्स की नेकियाँ और बदियाँ मुकर्रर की गई, और वहाँ क्या लिखा गया कि जिसने नेकी का इरादा किया लेकिन उस पर अमल ना किया तो फिर भी एक नेकी का अजर है। सोचिए, गुनाह की बात इससे ऑपोजिट है। अल्लाह तआला के हाँ क्या है उसके पास, अल्लाह ने उसके लिए अपने हाँ 10 गुना से 700 गुना तक नेकियाँ लिखी हुई हैं, और अगर इसने इरादे के बाद इस पर अमल कर भी लिया तो अल्लाह तआला ने इसके लिए अपने यहाँ 10 गुना से 700 गुना तक नेकियाँ लिखी हैं, और इससे बढ़कर और जिसने किसी बुराई का इरादा किया और इस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह तआला ने इसके लिए अपने यहाँ नेकी लिखी है, और अगर इसने इरादे के बाद इस पर अमल कर भी लिया तो यहाँ उसके लिए एक बुराई लिखी है। समझ आ रहा है कई दहाई का मसला। तो ये आयतें अजाब कब्र की दलील भी हैं। हर सुबह शाम फिरौनियों की रूहें जहन्नम के सामने लाई जाती हैं, और क़यामत तक उनको अजाब होता रहेगा। और क्या कहा जाएगा, सुनन दारवी की रिवायत है 1566, तुम अपनी कब्रों में दज्जाल के फितने की तरह फितने में मुब्तला किए जाओगे। और न जाने आज की रात ही कब्र में आ गई तो क्या होगा। अल्लाह ईमान की मौत और इस्लाम वाली ज़िंदगी दे। क्या सीखा, मोमिन बनना है, सीधा रास्ता बताने वालों की पैरवी करनी है, निजात की तरफ बुलाना है, बुरे अमाल से बचना है, रब की तरफ दावत देनी है, आग कुफर और शिर्क की तरफ दावत देने वालों से बचना है। और आगे चंद आयात, रुकू नंबर 11, 51 से 60, अल्लाह ईमान वालों की कदर करता है। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु, यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनिया की ज़िंदगी में भी करेंगे, और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे, जिस दिन जालिमों को इनके उज़र माजरत कुछ नफ़ा न देंगे, ना इनके लिए लानत होगी और इनके लिए बुरा घर होगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत नामा अता फरमाया और बनु इसराइल को इस किताब का वारिस बना दिया, कि वो हिदायत और नसीहत थी अक्लमंदों के लिए। पस ए नबी, आप सब्र कीजिए कि अल्लाह का वादा बेशक सच्चा है, बस आप अपनी लग्जिशों की माफ़ी मांगते रहिए और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करता रहे। जो लोग बावजूद अपने पास किसी सनद के ना होने के आयात इलाही में झगड़ते हैं, उनके दिलों में सिवाय अपनी बड़ाई के और कुछ नहीं, वो इस तक पहुंचने वाले ही नहीं। बस तो अल्लाह से पनाह मांगते रहिए, बेशक वो पूरा सुनने और सब कुछ देखने वाला है। आसमान और ज़मीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ी है, लेकिन ये बात और है कि अक्सर लोग बेइल्म हैं। अब देख रहे हैं कि इन पारों में कितना इल्म का भी तस्करा है। अंधा और बीना बराबर नहीं, ना वो लोग जो ईमान लाए और भले काम किए बदकारों के बराबर हैं। तुम बहुत कम नसीहत हासिल कर रहे हो। क़यामत बिल यकीन और बिलाशुबा आने वाली है, लेकिन ये और बात है कि बहुत से लोग ईमान नहीं लाते। और तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से खुदसरी करते हैं, वो भी जलील होकर जहन्नुम में पहुँच जाएंगे। तो इन आयात में हमने पहले एक चीज़ देखी, आयत 52 में, यौम ला यन्फउज़्ज़ालिमीन माज़िरतुहुम। दुनिया में जिस बंदे से भी आपका मेरा मामला हो ना, कभी कभी हमारे उज़र मान जाता है। अच्छा ठीक है, अल्लाह आपको माफ़ करें। अच्छा अच्छा ठीक है ना, यहाँ लोग झूठ बोल के भी सच्चे बन जाएं, उनको इख्तियार है, और सच्चे होते हुए भी झूठे बना दे कोई, उनको इस पे भी अगले को इख्तियार है। अल्लाह के हाँ ये नहीं होगा। अल्लाह की किताब को झुठलाने वालों की कर्तनों में तौक और जंजीरें होंगी, और अपनी गुमराही का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराने वालों को यौमुल अशहाद यानी मायूसी और नाकामी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ वो हदीस है कि अल्लाह के नबी की एक दुआ जो है वो संभाल दी गई थी क़यामत के दिन के लिए, और वो उस दिन करेंगे। ये मुस्नद इसहाक इब्न रुकिया की रिवायत है 822। अमल की बातें, सब्र करना है, किताब का सच्चा वारिस बनना है, अपने कसूरों की माफ़ी चाहनी है, अल्लाह की आयतों पे झगड़े नहीं करने, और अल्लाह की पनाह मांगनी है, और अल्लाह ताला की इबादत से तकब्बुर नहीं करना। हम इतनी ही बातें सुनते जा रहे हैं, हमें असर भी हो रहा है, हमारे अंदर उतर रही हैं। अब देखिए, ये रब्बानी कलाम है, ये रब्बानी दस्तरखान है। अगर हम इसके अंदर से अपने लिए नसीहत की ग़िज़ा नहीं लेंगे तो फिर कब? आगे पढ़ेंगे 27वें पारे के एंड में, अलम यानी लिल्लज़ीना मनु अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की खशियत से डर जाएं, तो एक एक बात को सुनते हुए कहा करें कि अल्लाह मुझे अपना डर दे दे, मुझे रब्बानी बना दे। आगे आयत 61 से 68, रुकू नंबर 12, अल्लाह ताला ही मुहसिन हकीकी है। अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल लैल, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात बना दी कि तुम इसमें आराम हासिल करो, और दिन को देखने वाला बना दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़े फजलो करम वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र गुजारी नहीं करते। यही अल्लाह है तुम सब का रब, हर चीज़ का खालिक, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो। इस तरह वो लोग भी फिरे जाते रहे जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। अल्लाह वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत बना दिया, और तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत ही अच्छी बनाई। तो हम शक्लों को बहुत डिस्कस करते हैं, तीन वक्तों पे, पैदाइश, बच्चा देखने जाएं, लिफाफा देने जा रहे हैं, सब बच्चे पे कमेंट कर रहे हैं, दुल्हन को देखते हुए, और मौत पे। आपको तब मौत पे भी मेकअप शुरू हो गया, हम क्यों पीछे रहे? अल्लाह को शक्ल दिखाने के लिए मेकअप की ज़रूरत नहीं है। चले आप सुनिए इन चीज़ों को। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत बना दिया, और तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई, और तुम्हें उम्दा उम्दा चीज़ें खाने को अता की। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, बस वो बहुत बरकतों वाला है, सारे जहान की परवरिश करने वाला। वो जिंदा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम खालिस इसी की इबादत करते हुए इसे पुकारो। तमाम खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। आप कह दीजिए कि मुझे इनकी इबादत से रोक दिया गया जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो, इस बिना पर कि मेरे पास मेरे रब की दलीलें पहुँच चुकी हैं। मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं तमाम जहानों के रब का ताबे फरमान हो जाऊँ। वो वही है जिसने तुम्हें मट्टी से, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से पैदा किया, फिर वो तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी कुव्वत को पहुंच जाओ, फिर बूढ़े हो जाओ, तुम में से बाज इससे पहले ही फौत हो जाते हैं, वो तुम्हें छोड़ देता है ताकि तुम मुद्दते मुअय्यन तक पहुंच जाओ और ताकि तुम सोच समझ लो। वो ही है जो जिंदा करता है और मार डालता है। फिर वो जब किसी काम का करना मुकरर करता है तो इसे कहता है कुन फयकुन, हो जा और वो हो जाती है। आप भी अपनी कोई नियत रख के दिल में कहिए इस वक्त। अल्लाह ताला कबूल करे हमारी सबकी दुआओं को। क्या सीखा? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर तस्लीम खम करना है, अक्ल से काम लेना है, शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला की सिफात पे गौर व फिक्र करना है। और आगे 69 से 78 रुकू नंबर 13, हक के मुखालिफिन के लिए अजाब। अलम तर इलल्लज़ीना युजादिलूना, क्या तूने इनको नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं? वो कहाँ फेर दिए जाते हैं? जिन लोगों ने किताब को जुटलाया और इसे भी जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजा, बस इन्हें अभी अभी हकीकत हाल मालूम हो जाएगी, जबकि इनकी गर्दनों में तौक होंगे और जंजीरें होंगी, घसीटे जाएंगे खौलते हुए पानी में और फिर जहन्नुम की आग में जलाए जाएंगे। फिर इनसे पूछा जाएगा कि जिन्हें तुम शरीक करते थे वो कहाँ हैं? सिर्फ तर्जमा काफ़ी है शिर्क दूर करवाने के लिए। अल्लाह ताला हमें बचा दे ऐसी तमाम खुराफात से जो अल्लाह के सिवा थे। वो कहेंगे कि वो तुमसे बहक गए, बल्कि हम तो इससे पहले किसी को भी नहीं पुकारते थे। कभी सच कभी झूठ, एकदम बंदा ऐसे ही करता है। बात मुँह से निकल भी रही है और छुपा भी रहे हैं। अल्लाह ताला कुफार को इसी तरह गुमराह करता है। ये बदला है इस चीज़ का जो तुम ज़मीन में ना हक भूले ना समाते थे और बेजा इतराते फिरते थे। अब आओ जहन्नुम में हमेशा रहने के लिए, इसके दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ। क्या ही बुरी जगह है तकबुर करने वालों की। बस आप सब्र करें, अल्लाह का वादा कतन सच्चा है। इन्हें हमने जो वादे दे रखे हैं इनमें से अक्सर हम आपको दिखाएं या इससे पहले हम आपको वफात दे दें, इनका लौटाया जाना तो हमारी ही तरफ है। यकीनन हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं जिनमें से बास के वाक़यात हम आपको बयान कर चुके। कितने? 25, 25, और 1 लाख के करीब थे, यानी सबका तो तذکرہ भी मुमकिन नहीं था। तो बास के किस्से तो हमने बयान किए ही नहीं, और किसी रसूल का ये मकदूर यानी उसकी ये ताकत कुदरत ना थी कि कोई मौजज़ा अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर ले आए। फिर जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा तो हक के साथ फ़ैसला कर दिया जाएगा और इस जगह अहले बातिल खसारे में रह जाएंगे। लिखिए, नबी को सब्र का हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए कि अजियत और तकलीफ का सब्र सबसे मुश्किल मगर अजर सबसे ज़्यादा। अपनों की दी हुई तकालीफ को बर्दाश्त करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ऐसा सब्र किस के लिए ज़रूरी है? नंबर एक, अम्बिया कराम के लिए, दाईयाने दीन, दीन की दावत देने वालों के लिए, और उलमा और फुकहा के लिए। आपने मैंने क्या सीखा? सब्र करना, इतराना नहीं, तकबर नहीं करना, अल्लाह के वादों को सच्चा समझना, अल्लाह तआला की आयत में झगड़े नहीं करने और शिर्क नहीं करने। रुकू नंबर 14, 79 से 85। चौपाई अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाहुल्लज़ी जाला लकुमुल अनाम, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाई पैदा की है जिनमें से बाज़ पर तुम सवार होते हो और बाज़ को तुम खाते हो, और भी तुम्हारे लिए इनमें बहुत से नफ़े हैं ताकि अपने सीनों में छुपी हुई हाजतों को इन्हीं पर सवारी करके हासिल करो और इन चौपाइयों पर और कश्तियों पर सवार कराए जाते हो। अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता जा रहा है, बस तुम अल्लाह की किन किन निशानियों के मुनकर बनते रहोगे? क्या उन्होंने ज़मीन में चल फिर कर अपने से पहलों का अंजाम नहीं देखा? गौर व फिक्र, आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी या कभी मोहनजोदाड़ो गए, हड़प्पा गए, रॉइंस देखे? इबरत के साथ देखो, ऐसी निशानियों को क्या कहते हैं? इबर कौन से? तारीख के चार जो निशानियां लिखाई थी ना आपको सूरत रोम से पहले, ये उन्हीं में से एक है। क्या किया इन्होंने? कुव्वत में सख्त और ज़मीन में बहुत सारी यादगारें छोड़ी थी, यानी यादगार मेमोरीज। इनके किए कामों ने इन्हें कुछ भी फ़ायदा न दिया। बस जब कभी इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर आए तो ये अपने पास के इल्म पर इतराने लगे। बिलाखिर जिस चीज़ को मजाक में उड़ा रहे थे वही इन पर उलट पड़ी। बस हमारा साहब देखते ही कहने लगे अल्लाह वाहिद पर हम ईमान लाए। अब क्या फ़ायदा, वो तो सामने है। और जिन जिन को हम इसका शरीक बना रहे थे हमने इन सब का इनकार किया, लेकिन हमारे अजाब को देख लेने के बाद भी इनके ईमान ने इनको नफ़ा ना दिया। अल्लाह ने अपना मामूल वो यही मुकर्रर कर रखा है जिसके बंदों में बराबर चला आ रहा है, और इस जगह काफिर खराब और खस्ता हुए। क्या पता चला कि अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करना है, पिछले लोगों के इंजाम पर गौर व फिक्र करना है, मजाक नहीं उड़ाना और अजाबों के आने से पहले ईमान लेकर आना है। तो सूरत गाफिर बहुत ही खूबसूरत मैसेज पे पूरी होती है कि हमेशा हक बात का साथ देना है, इसराफ से बचना है, अल्लाह के दीन में शक नहीं करना, गुनाह हो जाने पर फौरी अल्लाह की तरफ रजू करना है और शुक्रगुजार बनना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।